ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में परीक्षा रद्द करने से फिलहाल इनकार किया। राज्य सरकार ने कहा, प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों और निर्वाचन पदाधिकारियों को आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में 19 और 20 मार्च को गरज के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने 15 मार्च को आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा की पहली पारी में कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक मामले में परीक्षा रद्द करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। आयोग ने आज कहा कि मामले की जांच चल रही है, इस संबंध में अब तक कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने संबंधी ठोस प्रमाण की मांग की है। आयोग ने कहा है कि ठोस प्रमाण और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने के बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। श्री यादव ने सरकार पर परीक्षा माफिया को बचाने का आरोप लगाया।
17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता। लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहाँ राज रहा वहाँ पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह, अब बिहार में तो गजबे हो गया।
वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार लोक सेवा आयोग में कितना भ्रष्टाचार था।
ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। जो युवा है, जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी, उसको तो कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकता? वो अपराधी है, ये ध्यान रखिएगा। जिस लोगों ने प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, प्रताप नहीं बनता है।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इसी तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों और निजी संपत्ति पर प्रदर्शित राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 72 घंटों के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार की ओर से चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। इधर राज्य में सभी जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। आचार संहिता के अनुपालन के लिए धारा 144 और 144A लागू कर दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनर, होर्डिंग और पोस्टर को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त दलों के साथ आज बैठक की। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती पहले कराने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों पर और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों, चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों और पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। प्रदेश की 40 सीटों पर भी 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्र में चुनाव कराया जाएगा। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीटों के लिए 13 मई को मतदान कराया जाएगा। पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय सीटों के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में 25 मई को मतदान होगा, जबकि सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी आई है। प्रदेश में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शेखपुरा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने भाभी जी शुभंकर की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महिला वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। राज्य में युवा वोटरों की संख्या 1,73,00,000 से अधिक है। इधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव में सभी लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने की अपील की है।
लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़के अधिक से अधिक पहुंचे। विद दिस अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू। बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे। दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त चुनावी बॉन्ड से संबंधित डिजिटल डाटा आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। ये डाटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर देखे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा सीलबंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इसे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित करने को लेकर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। श्री कुशवाहा ने कहा कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सुशासन और गरीब कल्याण एनडीए सरकार का प्रमुख एजेंडा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा CUET यूजी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और मतदान तिथियों के आधार पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य से एक ट्रफ रेखा गुजरने के कारण अधिकतर स्थानों पर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर से एक विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
आज के प्राप्त मौसमी विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में अभी शुष्क पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार के एक दो स्थानों पर 19 मार्च से मेघ गर्जन के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है, जो 21 मार्च तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।
बिहार सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी आज पटना में एसएसबी के सीमांत मुख्यालय पहुंचे। बल के आईजी पंकज दाराद और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री चौधरी ने पटना में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्हें विभिन्न बटालियन की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और अन्य उपायों के बारे में भी महानिदेशक ने जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न सीमा चौकियों के माध्यम से बेहतर सीमा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बटालियनों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। एसएसबी महानिदेशक इसके बाद मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत बटालियनों का निरीक्षण करेंगे। जनवादी लेखक संघ की ओर से आज पटना में कविता की जमीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह ने की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविता से समाज में व्याप्त गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी और नारी उत्पीड़न जैसी कड़वी सच्चाइयों पर प्रकाश डाला। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने गया में प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला का पटना से ऑनलाइन उद्घाटन किया। कैमूर जिले का 33वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गयी। इधर बक्सर जिला भी आज अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है। बांका जिले के बाराहाट बाजार में बाइक सवार तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर एक स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण और नगद लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम चंपारण पुलिस ने भगहा थाना क्षेत्र से एक तस्कर को 21 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के उसरी गांव के पास जीटी रोड पर दो वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में परीक्षा रद्द करने से फिलहाल इनकार किया। राज्य सरकार ने कहा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों और निर्वाचन पदाधिकारियों को आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में 19 और 20 मार्च को गरज के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।